कृष्ण। आज कार्तिक महीने की अमावस्या है, दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन हम पटाखे वगैरह सुन रहे हैं और दीप की माला सब जगह लगाई जाती है। वैसे बताया जाता है कि इसी दिवस पर त्रेता युग में श्री रामचंद्र विजयी होकर अयोध्या लौट कर आए थे और उनके स्वागत के लिए शहर को दीपों से और अन्य तोरण फूल इत्यादि से सजाया हुआ था। श्री राम ने रावण को हराया था विजयदशमी के दिवस दशहरा, और फिर लंका से अयोध्या आए और अयोध्या में प्रवेश उनका इस दिवस पर हुआ। वैसे और एक भी बहुत महत्वपूर्ण और मधुर घटना इसी दिवस पर घटी थी, आपको मालूम है वो क्या है? हाँ, नरकासुर का वध, लेकिन वो इतना मधुर नहीं है। है क्योंकि कृष्ण की लीला है, तो सब कृष्ण की लीला मधुर है, इसलिए नरक चतुर्दशी कहते हैं। लेकिन और क्या मधुर चीज हुई थी इस दिवस पर? हाँ, दामोदर लीला, बहुत अच्छा है, करेक्ट। इसी दिवस पर माता यशोदा ने बाल कृष्ण को उखल से रस्सी से बांध दिया था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन वृक्षों को नीचे गिराया था, तो ये इसी दिवस पर हुआ। इसलिए वैष्णव जो है इस दिवस पर, दिवाली दिवस पर, खास भगवान को बाल गोपाल के रूप में याद करते हैं। आज के दिवस की बात तो दूर है, इस सारे महीने में हम सब कृष्ण की इस सुंदर लीला का स्मरण करते हैं। सुबह शाम हम दीप अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को, और सत्यव्रत मुनि विरचित दामोदर अष्टकम, ये सुंदर प्रार्थना हम गाते हैं और दीप अर्पण करते हैं। तो क्योंकि ये लीला कार्तिक महीने में हुई, इसलिए सारे कार्तिक महीने में वृंदावन में ऐसे चलता है। और कार्तिक महीने में खास करके दीप अर्पण करना भगवान श्री कृष्ण को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। पिछले साल सारा प्रवचन इसके ऊपर था, आप में से जो थे यहां पर आपको याद होगा कि कार्तिक महात्म्य, कार्तिक महीने की महिमा, कार्तिक में भक्ति करने से क्या लाभ मिलता है, कितना महत्वपूर्ण है भक्ति, खास करके कार्तिक महीने में भगवान श्री प्रसन्न होकर बहुत सारे आध्यात्मिक और यहां तक भौतिक लाभ भी देते हैं सारे भक्तों को। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला। हम सब बचपन से इन लीलाओं को सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला इतनी सुंदर है कि बार बार सुनने की इच्छा करती है। और हर बार जब हम ये लीला सुनते हैं तो ऐसी कोई नई बात अवश्य आती है जो कि शायद हमने आज तक सुना नहीं होगा। आप मन में सोच लीजिए, आपने सबने बचपन से दामोदर की लीला सुनी है ना, सबने सुना है, शायद ऐसे कोई नहीं होंगे जिन्होंने बचपन से नहीं सुना है। लेकिन फिर भी अवश्य जब तक आज का प्रवचन समाप्त हो जाएगा, कुछ न कुछ ऐसी एक बात होगी जो शायद आपने सुना नहीं होगा, या एक दृष्टिकोण एक बाहर निकल आएगा, तो अरे मैंने ऐसे तो सोचा नहीं था इसके बारे में। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला, बहुत मधुर। और जो वैष्णव आचार्य इन लीलाओं के ऊपर टीका करते हैं तो इन लीलाओं को और भी सुमधुर बना डालते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने इसको वेद व्यास जी से सुना और फिर उसको और मीठा, रसमालयम निगम गलितम कल्पतरोर। तो ये जो कल्पतरु है वेदों का, उसका सबसे गलितम फलम, सबसे पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। और ये श्रीमद् भागवत और भी मीठा हो चुका है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने उसको चख कर उसको अभी आगे परीक्षित महाराज को दिया है। इसलिए बताया जाता है कि रसिका अहो मुहूर अहो रसिका भुवि भावुका, हे भावुक लोग, मतलब हे रसिक जन जो भक्ति के रस का स्वाद लेना चाहते हैं, मुहो बार बार इन लीलाओं को श्रीमद् भागवत को सुनते रहो, क्योंकि ऐसा सुनने से तुम्हें एक ऐसे अमृत का पान करने का अवसर मिलेगा जो इस जगत में कभी भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण की लीला भी ऐसे ही है, अमृत। और सुखदेव गोस्वामी ने इन कृष्ण लीलाओं को दशम स्कंध तक रखा है। पहले 9 लीलाओं में उन्होंने अन्य कई लीलाओं का वर्णन किया, अन्य उनके अवतार इत्यादि, लेकिन दशम स्कंध में श्री कृष्ण का अवतीर्ण, उनका जन्म, और धीरे धीरे से उनका वृंदावन में या गोकुल में बड़ा होना, उनकी लीलाएं करना इत्यादि। तो गोकुल की बात है कि एक दिन माता यशोदा के घर में जो भी दासियां थीं वो सब अलग अलग कामों में व्यस्त थीं। आखिर नंद बाबा तो वहां के राजा थे ना, वृंदावन के, वहां के जो भी ग्वाल थे उनके वो प्रमुख थे, इसलिए उनको नंद महाराज कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके घर में कितने सारे दासियां हुई होंगी, ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए। लेकिन हमें जानना चाहिए कि कोई दासी हो या कोई क्या हो, वृंदावन में सभी शुद्ध भक्त। बल्कि यशोदा माता के घर में किसी को दासी बनने का एक अवसर मिला, ये तो अहो सौभाग्य है। क्योंकि किसकी सेवा की उन्होंने? श्री कृष्ण की। दिन भर श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, दिन भर श्री कृष्ण बात सुनी, उनके सुंदर मधुर लीलाओं को देखते रहे। तो कितने भाग्यशाली, ये कोई साधारण दासी नहीं है। तो खैर, सारे दासी जो हैं वो अन्य कामों में व्यस्त थे। तो माता यशोदा ने जो दूध का मंथन करने का काम है वो खुद करना चाहा। वहां गोकुल में सब गाय के ऊपर निर्भर था, गोकुल, इसलिए गोपाल कृष्ण का नाम है गोपाल। तो गाय तो होनी ही है वहां पर, और जहां गाय है वहां पर दूध, दही, मक्खन, पनीर, रसमलाई, रसगुल्ला, ये सब तो होना है। तो माता यशोदा दूध का मंथन करने के लिए वो एक जगह गई और फिर मंथन करना उन्होंने आरंभ कर लिया। सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तारित रूप में वर्णन करते हैं माता यशोदा किस तरह से दिखती थी, कैसे कपड़े पहने थे, और किस तरह से वो दूध का मंथन कर रही थी, और मंथन करते करते कैसे वो थक गई थी, उनके कैसे हाथ हिल रहे थे। और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि माता यशोदा जैसे नित्य सिद्ध भक्त हैं, ये सदैव कृष्ण हैं यहाँ पर, और उनकी वेशभूषा से, उनके रहन सहन के ढंग से, इनके बोल चाल से, उनके चिंतन मनन करने के ढंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्रेम करना चाहते हैं, उनको माता यशोदा के कार्यों से प्रेरणा मिलनी होगी, उनको उनके पद चिन्हों में चलना होगा। इसलिए जो भी वर्णन माता यशोदा का आया है वो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हर एक छोटी छोटी बात सुखदेव गोस्वामी ने कही है, कोई बात छोड़ी नहीं है। तो माता यशोदा इस तरह से दूध का मंथन करती रही। उधर श्री कृष्ण सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की नींद, जैसे कि नींद तो तमोगुण में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नींद ये योग निद्रा कहलाती है। निद्रा तथा कथित निद्रा की अवस्था में होते हुए भी भगवान हमेशा सर्वज्ञ रहते हैं, उनकी चेतना हमेशा विकसित रहती है, वो हर चीज को जानते हैं, हर चीज का स्मरण कर सकते हैं। हम जब सोए हुए होते हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सोते हुए भी सब कुछ संभाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो खैर, भगवान की लीला है, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य रूप धारण किया था, या मनुष्य समाज में वो प्रकट हुए थे। तो मनुष्यों में जैसे प्रथा या जैसे क्रियाकलाप होते हैं, उनका भी भगवान नकल कर रहे हैं। तो भगवान भी सो रहे थे, क्योंकि बच्चे लोग ज्यादा सोते हैं, तो भगवान भी सो रहे थे और उठे, भूख लगी। जब भूख लगी तो बच्चा क्या करता है, माँ को ढूंढता है। तो माँ को ढूंढते ढूंढते अलग अलग कमरों में गए, कहाँ है माता यशोदा। आखिर ढूंढ लिया, माता यशोदा मंथन कर रही है दूध की। तो वहां चले गए, अरे मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए, और मेरी माँ वहां मंथन कर रही है, दूसरा काम कर रही है, नहीं चलेगा, मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों की भावना रहती है कि हर एक का ध्यान उनके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। बच्चे लोग खुश होते हैं, सब लोग उनकी ओर देखेंगे, उनकी ओर बात करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सबका ध्यान उनके ऊपर केंद्रित है तो बच्चे खुश होते हैं, और नहीं होगा तो बच्चे गुस्से हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसी नकल कर रहे थे, अरे मैं भूखा हूं और माता मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही, वो कुछ दूसरा काम कर रही है। तो जाके अपने नन्हे हाथों से उन्होंने मंथन करने की जो छड़ी है, जो लाठी है, वो पकड़ ली। तो माता यशोदा ने देखा कि ठीक है, श्री कृष्ण यहां आया है, शायद भूख लगी है। तो बड़े स्नेह भरे आंखों से देखा कृष्ण की ओर, और बाल कृष्ण को उठाकर अपनी गोदी में स्तनपान कराना आरंभ किया, और श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखती रही, जो कि काजल से, और उनका शरीर जो कि अन्य गहनों से सुशोभित था। और फिर अचानक उन्होंने जो दूध अंदर सिगड़े के ऊपर रखा हुआ था, चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, वो उबलने लगा और बाहर गिरने लगा। तुरंत श्री कृष्ण को नीचे रख दिया जमीन पर। हालांकि श्री कृष्ण उस समय स्तनपान कर रहे थे, दूध का पी रहे थे, लेकिन वहां दूध को गिरते हुए देखकर श्री चूल्हे से नीचे रखने के लिए, उधर श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। अब देखिए माता यशोदा का कार्य क्या, यह सही है या गलत है। माता यशोदा को मौका मिला था कि वह स्वयं श्री कृष्ण को दूध पिलाए, स्वयं श्री कृष्ण को अपने हाथों में, अपने गोदी में पकड़ ले। यह अवसर कितने लोगों को मिलता है, ब्रह्मा जी, शिव जी, कभी उनको ऐसा अवसर मिला था? लक्ष्मी जी को भी मिला था? किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं। लेकिन माता यशोदा का भाग्य देखिए कि भगवान को उन्होंने अपने गोदी में पकड़ लिया था, और इतना होते हुए भगवान को संतुष्ट पूरी तरह से करने के बजाय भगवान को असंतुष्ट रखकर वो चली गई, और भगवान वहां गुस्से होकर रोने लगे। तो किस तरह की भक्त है माता यशोदा? भक्ति क्या है? भक्ति है जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, बराबर है ना? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, इसको भक्ति कहते हैं। जब हम हमारी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, भोग, विषय भोग कहते हैं। लेकिन जब हमारी सुविधा असुविधा को न देखते हुए, हमारी इंद्रिय तृप्ति की कोई परवाह न करते हुए, जब हम केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारे जीवन की सफलता इसी में है। अतः पुंबित द्विजः श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम्। जो भी कर रहे हो हम, किसी भी वर्ण के क्यों न हो, किसी भी आश्रम के क्यों न हो, हमारे कार्य कौन से भी क्यों न हो, हम बड़े आदमी हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, शिक्षित हैं, नहीं हैं, पंडित हैं, नहीं हैं, जो भी हो, लेकिन हमारे जीवन की संसिद्धि, परिपूर्णता, परफेक्शन, वो किसमें है? समसिद्धिर हरितोषणम्, भगवान श्री हरि को संतुष्ट करना। अगर भगवान संतुष्ट हुए तो फिर हमारा जीवन सफल। तो अब यहां माता यशोदा को हम इतना बड़ा भक्त कहते हैं, भगवान उनके पुत्र बने, उनको भगवान का मां बनने का चांस मिल गया, और अभी यहां भगवान को असंतुष्ट करके चले जा रहे हैं, केवल दूध वहां पर है इसलिए। अरे कितना सारा दूध है गोकुल में, गोकुल में दूध की कमी नहीं है। नंद महाराज के 900,000 गाय है, अभी थोड़ा सा एक पात्र में जो दूध है वो उबल गया तो कौन सा बड़ा नुकसान हो गया। और यहां कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण को दुखी करके चले गए। तो क्या माता यशोदा की ये भक्ति है या नहीं है, आप क्या समझते हैं? भक्ति है कि नहीं है? है? क्यों, भगवान को नाराज किया उन्होंने, दुखी कर दिया, भगवान की इच्छा पूरी नहीं की। भगवान दूध पीना चाहते थे, उनको नीचे रख के चले गए दूसरे काम के लिए। हाँ, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न थे ही। माता यशोदा का जीवन कैसा था, 24 घंटे हर एक क्षण कृष्ण के लिए था। कृष्ण के अलावा माता यशोदा को कुछ और मालूम ही नहीं था। जीने का केवल एकमात्र उद्देश्य था माता यशोदा का, और वो है श्री कृष्ण की सेवा करना, बस। और माता यशोदा के चित्त में और कोई बात ही नहीं थी। हर चीज जो भी माता यशोदा, तो कृष्ण के लिए। अगर दूध उबाले रखा है तो वो भी कृष्ण के लिए, दूध पिला रही है तो भी उसकी कृष्ण के लिए, हर कार्य वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वो तो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, लेकिन सेवा करते करते कई बार कई अलग अलग सेवाएं एक साथ आ जाती हैं। फिर भक्त को निर्णय लेना पड़ता है कि मैं कौन सी सेवा करूं, ये सेवा करूं कि वो सेवा करूं कि वो सेवा करूं। प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवद गीता में इसका उत्तर देते हैं। तेषां सतत युक्तान, वो कहते हैं कि जो सतत प्रीति भाव से मेरी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों को मैं अंदर ही से दिव्य ज्ञान पर मार्गदर्शन करता हूं, जिससे कि वो मेरी ओर आ सके, मुझे प्राप्त कर सके। ऐसी दिव्य बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं और फिर भक्त निर्णय ले पाता है। ठीक है, भगवान की सेवा, भगवान से प्रदत्त जो बुद्धि मिलती है भक्त को, उससे वो निर्णय लेता है। ठीक, अब ये तो है महत्वपूर्ण, लेकिन इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, तो मुझे ये अभी करना चाहिए। इसलिए भक्त ऐसे निर्णय लेते हैं। तो माता यशोदा ने सोचा कि अभी केवल 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए मैं कृष्ण को छोड़ूंगी, वहां बहुत मीठा दूध है, और वो दूध कौन सा है, वो माता यशोदा या नंद महाराज की जो गाय है उनका दूध है। माता यशोदा ने देखा था और सुना था कि कृष्ण के बारे में बहुत शिकायतें आ रही हैं ब्रजवासियों से। सब गोपियां आकर शिकायत करती हैं कि अरे यशोदा, तुम्हारा गोपाल देखो हमारे यहाँ आके माखन चोरी करता है, दूध चोरी करता है। और कई बार माता यशोदा कृष्ण को डांटती है, अरे क्या हमारे घर में मक्खन दूध कम है, क्यों दूसरों के घर में जाते जाके चोरी करते हो। तो माता यशोदा की इच्छा थी कि इतना अच्छा दूध श्री कृष्ण के लिए घर में तैयार हो जाए कि श्री कृष्ण को कभी भी दूसरों के घर में जो दूध मक्खन है उसके प्रति आकर्षण नहीं हो जाए। तो वो विशेष तरह के घास खिलाती थी अपने गवों को, और जिनका स्वाद बड़ा अच्छा था, और उस स्वाद का, उस घास का गंध, स्वाद, गुण इत्यादि इतने उत्कृष्ट थे कि जो दूध उन गायों से निकलता था वो भी श्रेष्ठ दूध था, बड़ा सुगंधित, मीठा, स्वादिष्ट, पौष्टिक इत्यादि। तो ये खास दूध था। और माता यशोदा ने सोचा कि हमारे गायों से निकला हुआ दूध अभी है, अभी उबल जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, मेरे को कृष्ण को ये दूध पिलाना है, और अभी 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अगर कृष्ण को मैं नीचे रखूंगी तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जल्दी से उठकर चली गई। इसलिए गलती या दोष नहीं है माता यशोदा, चाहे वो स्तनपान करा रही हो कृष्ण को या कृष्ण के लिए है, दोनों बराबर के कार्य हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं, वो तो अंतर, तो अंदर से वो संतुष्ट थे, वो तो प्रसन्न थे माता यशोदा की भावना को जानकर, लेकिन फिर भी वो लीला कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे लीला की कि मानो बहुत गुस्सा हो गए, अपने अधर को, अपने होठों को चबाने लगे दांत से, आंखें लाल लाल कर ली और झूठे आंसू निकालने लगे आंख से। तो ऊपर बताते हैं कि कई बार बच्चे जब गुस्से हो जाते हैं तो झूठे झूठे आंसू निकालते हैं सबको आकर्षित करने के लिए। कई बार देखा जाता है कि अगर बच्चा गिर जाता है, कुछ होता है, अगर कोई देख रहा है तो जोर जोर से रोएगा, कोई नहीं देखता है तो रोने से भी क्या फायदा है, तो रोएगा नहीं, लेकिन अगर रोएगा तो सब लोग अरे अरे क्या हुआ क्या हो गया लगा लगा करके सब लाड़ प्यार करेंगे। तो बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो श्री कृष्ण भी मनुष्य समाज में आए हैं तो वो भी क्या करने लगे, रोने लगे, और फिर उनको आया बड़ा गुस्सा, और गुस्सा से क्या किया उन्होंने, पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर लेकर पास में जो दही का हंडा था, दही की का पात्र था, उसको फोड़ दिया, और फोड़ कर फिर याद आ गया, हाँ अभी पकड़ा जाऊंगा, अभी माता माता आए। तो कृष्ण वहां से निकल पड़े और किसी एकांत स्थान में गए और वहां पर मक्खन चोरी करने लगे। उखल के ऊपर चढ़ के, जो उखल जो उल्टा हो रखा हुआ था उसके ऊपर चढ़ गए और ऊपर से फिर वो दही के हंडी चूल्हे को बराबर, दूध को बराबर करके वापस आ गए और उन्हें दो चीजें देखी, एक दही का पात्र टूटा हुआ है और दही सब जगह बिखरा हुआ है, ये एक बात उन्होंने देखी। दूसरी बात क्या देखी कि श्री कृष्ण नहीं है, दोनों चीजें देखी ना, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष पे पहुंच गए वो कि ये श्री कृष्ण का काम है। और फिर धीरे धीरे से देखने लगे, कहां गए अभी देखते हैं उसको ठीक करते हैं। ये है माता यशोदा का स्तर कि वो सोचती है कि मैं कृष्ण को ठीक कर सकती हूं। फिर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पद चिन्ह, क्योंकि सब मक्खन में इधर उधर चलते चलते उनके चरण कमलों में मक्खन लग गया था, दही लग गया था, तो चलते चलते उनके पद चिन्ह सब दिखाई पड़ रहे थे, दही दही दूध मक्खन के पद चिन्ह उनके पीछे 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 लटक गए। क्या भगवान को नहीं मालूम कि माता यशोदा को पता चलेगा मेरे पद चिन्हों को देखकर मेरे पीछे आएगी? भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी ये भगवान की लीला है अपने कार्यों को, लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए। फिर माता यशोदा छड़ी हाथ में लिया, अभी सिखाऊंगी सबक इसको, और फिर चलते 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 गई पद चिन्हों के पीछे पीछे, और फिर दूर एक कमरे में देखा श्री कृष्ण उखल के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं, मक्खन खा रहे हैं और साथ साथ जो बंदर हैं उनको भी खिला रहे हैं मक्खन, और बीच बीच में बाएं दाएं ऊपर नीचे पीछे आगे देख, और उनके आंखें जो हैं बड़े चंचल नटखट हैं क्योंकि वो घबरा रहे हैं कहीं माता यशोदा अचानक आ जाए तो क्या होगा। तो उस तरह से बड़े सतर्क होकर वो वहां पर बैठे हुए थे। माता यशोदा चुपचाप हल्के से पीछे से आई छड़ी लेकर, आवाज न करते हुए, ताकि कृष्ण को समझ में नहीं आया कि वो पीछे से आ रही है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने आंखों के कोने से देख लिया कि मां आ रही है, जैसे देखा कुदल से कूद मारा और भागने लगे, और बंदर भी इधर उधर भाग गए। माता यशोदा के आने से कौवे जो अंदर आए थे कमरे के वो उड़कर चले गए, तो कृष्ण भगवान को हिंट मिल गया कि गड़बड़ है, कौवे भाग रहे हैं, क्या बात है, देखा तो माता यशोदा है। ये जो कौवे हैं ये भी तो कृष्ण के मित्र है ना, ये भी कृष्ण के भक्त हैं, ये वृंदावन के कौवे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए देखा, ये कोई साधारण कौवे हो सकते हैं क्या? तो जब माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण भाग के जा रहे हैं तो तुरंत भागने लगी उनके पीछे छड़ी लेकर हाथ में, और श्री कृष्ण छोटे थे तेजी से भाग सके, माता यशोदा उनका शरीर थोड़ा भारी था तो उनको थोड़ा समय लगा, और जैसे वो भाग रही थी तो उनका उनके बाल बिखर गए, सारे बाल पे फूल जो थे वो सब इधर उधर गिर गए, और काफी थक गई माता यशोदा। कृष्ण भगवान इधर उधर भागने लगे और माता यशोदा पीछे भाग रही है छड़ी लेकर, रुक जाओ सिखाते वो भी। और आखिर में माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। वो श्री कृष्ण जिनको पकड़ने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए कितने सारे योगी ज्ञानी मुनि ऋषि बहुत सालों तक ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, और फिर भी आखिर में उनको ज्यादा से ज्यादा भगवान के निराकार में एक अणुमात्र स्थान मिल जाता है। इतनी सारी तपस्या करने के बाद भी वो भगवान के करीब भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहां पीछे भाग रही है और पकड़ के भगवान को उन्होंने हाथ में रखा है, और जैसे ही भगवान पकड़ गए अपनी माता यशोदा से तो ऊपर देखने लगे बड़े भयभीत आंखों से, और उनकी आंखों में माता यशोदा ने काजल लगाया हुआ था। तो जैसे माता यशोदा ने पकड़ लिया कृष्ण को बड़ा डर लग गया, इतना डर लग गया कि रोने लग गए, और रोकते आंखों से आंसू आए तो आंसू से क्या हो गए, जो काजल लगा था आंखों में सब बिखर गया, तो मुंह में सब काजल बिखर गया, मुंह काला 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 हो गया। और ऐसे अवस्था में श्री कृष्ण आंसू भरे आंखों से बड़े डरे हुए स्वभाव से माता यशोदा की ओर देख रहे थे। उस समय माता यशोदा ने सोचा कि अरे ये बहुत डर रहा है, ठीक है मैं छड़ी फेंक देती हूं। तो माता यशोदा ने छड़ी फेंक दी ताकि कृष्ण इतना डरे नहीं। तो ये कितने आश्चर्य की बात है। देखिए माता यशोदा का स्थान कितना अद्भुत है। बड़े बड़े जो देवी देवता होते हैं वो भी श्री कृष्ण से डरते हैं, लेकिन यहां श्री कृष्ण एक साधारण गांव के महिला से इतना डर रहे हैं कि वो रोने लग गए हैं। और फिर माता यशोदा ने सोचा कि ठीक है, अगर मैं ज्यादा इसको दंड दूंगी तो शायद ज्यादा घबरा जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको बांध के रखना चाहिए। क्यों बांधना चाहिए? क्योंकि आगे वो ऐसे शरारत नहीं करे, और दूसरी बात शायद अभी इतना डर गया है कि घर से भाग ना जाए, घर से भाग जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको बांध के रखती हूं। पास में उखल था जिसके ऊपर श्री कृष्ण चढ़ गए थे, और थोड़ी सी रस्सी थी, तो माता यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को उखल की ओर रखा और बांधने का प्रयास किया। अभी तक श्री कृष्ण ने कई सुंदर लीलाएं किए थे, जैसे कि उन्होंने पूतना का वध किया था, शकटासुर का वध किया था, तृणावर्त का वध किया था, और माता यशोदा को अपने सुंदर मुखारविंद में विराट रूप दिखलाया था जब उनके ऊपर मिट्टी खाने का आरोप लगाया गया था। तो अब तक उन्होंने कई ऐसे विशेष कार्य कर दिखाए थे, लेकिन अभी भगवान कृष्ण अपने विभूति का और प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे, अपने ऐश्वर्य का, अपने विशेष शक्ति का। और किस तरह से अपना विभूति को प्रकाशित किया, प्रदर्शित किया भगवान कृष्ण ने, जब माता यशोदा रस्सी को बांधने गई तो उस समय वो रस्सी दो उंगली कम पड़ गई। तो माता यशोदा ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, तो पास में और एक रस्सी पड़ी हुई थी उससे पहले रस्सी बांध दी, और बांधने के बाद रस्सी लंबी हो गई। फिर उस लंबी रस्सी से फिर श्री कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास किया, और क्या हुआ, फिर से रस्सी दो उंगली कम। अरे माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। फिर एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा रस्सियां लाना शुरू किया माता यशोदा ने, लेकिन हर बार जितने भी रस्सियां वो बांधती थी हमेशा वो रस्सी दो उंगली कम ही रह जाती थी। आखिर में हैरान होकर, परेशान होकर, जितने घर में रस्सियां थी उन सबको माता यशोदा ने लाई, एक के बाद बांधकर फिर से श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। माता यशोदा तो परेशान थी लेकिन हंस भी रही थी, लेकिन क्या हो रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर वृंदावन की जो दूसरी गोपियां थी, माता यशोदा की सहेलियां, वो देखकर हंस रही थी, मजा देख रहे थे कि श्री कृष्ण इस बार अभी कौन सा अद्भुत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने आज तक इतने अद्भुत कार्य किए थे कि हमेशा ब्रजवासीगण आश्चर्यचकित रह जाते थे, वो समझ नहीं पाते थे कृष्ण के कार्यों को। तो अन्य गोपियां भी देख के खड़ी थी और देख रही थी इस सुंदर दृश्य को। तो घर के सारे रस्सियों को लाने के बाद भी नहीं पाई, फिर भी दो उंगली कम। तो कृष्ण क्या बताना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि कोई मुझे बांध नहीं सकता जब तक कि मैं तैयार नहीं होता हूं, मेरे अनुमति के बिना कोई मुझे बांध नहीं सकता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण एक चीज से बांधे जाते हैं, और वो क्या है, उनके भक्तों का प्रेम। केवल उनके भक्तों के वश में नहीं आते, वो भक्तों के प्रेम के वश में आते हैं। वो प्रेम वो चीज है जिससे वो बांधे जा सकते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण को कृपा की भावना निर्माण हुई हृदय में, अपने माता के परेशानी को, पसीने को, थकावट को देखा, और फिर सोचा कि चलो अभी मैंने विभूति प्रदर्शित कर दी, अभी माता को संतुष्ट कर दें। फिर तुरंत रस्सी बराबर हो गई और माता यशोदा बांध सकी श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण रस्सी से बांधे गए। तो ये बहुत अद्भुत और विचित्र बात है। वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि वो गीता में घोषणा करते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, वो अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं केवल अपने एक अंश से, जो कि परमात्मा है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का वो रूप है जो कि हर एक ग्रह में है, हर एक लोक में है, हर एक प्राणी के हृदय में है और हर एक अणु के भीतर है। लेकिन ये एक अंश मात्र भगवान का, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण कर सकता है, ये विशेष शक्ति है। इतना सब भगवान श्री कृष्ण अपने अंश मात्र से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन यही श्री कृष्ण आज अपने भक्त के द्वारा नियंत्रित हो गए हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण या भगवान के बारे में उपनिषदों में बताया जाता है कि मन के भी गति से ज्यादा तेज भगवान जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मन की गति कितनी तेज है, देखिए हम सब यहां राधा गोकुलानंद मंदिर में बैठे हैं, लेकिन अगर हमने सोचा हमारे घर के बारे में तो हमारा घर गया वड़गांव में, शाहपुर में, जहां भी हमारा घर है, हमारा घर तुरंत मन वहां जाकर चले आया वापस। मतलब यहां से शाहपुर जाने के लिए मन को कितना समय लगता है, एक क्षण भी नहीं, एक क्षण का छोटा सा हिस्सा। तो मन की गति कितनी तेज है और भगवान इससे तेज जा सकते हैं। लेकिन हालांकि भगवान इतने तेज जा सकते हैं, फिर भी माता यशोदा ने, जो कि एक स्त्री थी जिनका शरीर भारी था, वो कोई ओलंपिक रेस में भागने वाले कोई पीटी उषा नहीं थी, लेकिन उनके पीछे भागकर भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने पकड़ लिया। तीसरी बात, घबराते हैं, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्यु धावति पंचमः। शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान के डर से भीषास्माद् वातः पवते, जो हवा है वो बहता है। भगवान के डर से भीषो देति सूर्यः, सूर्य अपना प्रकाश और उष्णता देता है। भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च, भगवान के डर से अग्नि भी अपना उष्णता और प्रकाश देती है और चंद्र भी अपना काम करता है। मृत्यु धावती पंचमः, और मृत्यु सबका पीछा करता है। मतलब यमराज अपना काम करते हैं। यमराज का काम क्या है, वो अपने यमदूतों को भेजते हैं और जब समय आ जाता है तो हर एक जीव को अपने अपने भौतिक शरीर से निकालकर उसे पुरस्कार या दंड देते हैं उनके कर्मों के अनुसार, और दोबारा एक शरीर, भौतिक शरीर उनको प्रदान करते हैं। तो मृत्यु देना यमराज का काम है। तो यमराज भी लोग भगवान से डरे हुए हैं, यहां तक शिव जी, ब्रह्मा जी, वो भी भगवान से डरकर अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन वही श्री कृष्ण जिनसे सब कोई डरता है, वो आज एक साधारण गांव की महिला से इतने डर गए हैं कि वो रो रहे हैं और माता यशोदा ने उनको बांध लिया है। तो देखिए कितनी सुंदर बात, हमें लगता है कि ये विरोधाभास है, लेकिन भक्त के लिए ये विरोधाभास नहीं है। जो अभक्त हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो इन चीजों को शायद ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो इनको बड़े अच्छे ढंग से समझ पाते हैं और वो जानते हैं कि ये केवल श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम से बांधे जाते हैं। भगवान अपने भक्त के हवाले हो जाते हैं जब उस भक्त के हृदय में इस तरह की शुद्ध प्रेमा भक्ति होती है। तो भगवान कृष्ण केवल रस्सी से बांधे नहीं गए, वो उखल से बांधे नहीं गए, माता यशोदा के प्रेम से बांधे गए। इस तरह से भगवान कृष्ण ने यह सुंदर लीला रचाई और फिर माता यशोदा वहां से चली गई। तो माता यशोदा ने सोचा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो श्री कृष्ण की नटखट जो शरारते हैं वो तो बंद हो जाएंगी, लेकिन श्री कौन रोक सकता है, श्री कृष्ण को जब लीला करनी होती है वो कुछ भी कर सकते हैं और अपने विशेष शक्ति का, विभूति का आगे चल के भी प्रदर्शन करने वाले थे। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे यहां तो सामने ये दो बड़े लंबे वृक्ष हैं, अर्जुन वृक्ष, और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि एक वृक्ष का इतिहास क्या है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, कि क्या इतिहास है इसका, ये कैसे हुआ कि श्री कृष्ण यहां पर आए, उसके बाद क्या हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि बहुत साल पहले की बात है, किसी पिछले युग की बात है, कि नारद मुनि वो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत के पास आ गए। जैसा आप जानते हैं कैलाश पर्वत ये तो शिवजी का स्थान है, कुबेर ये देवताओं के खजांची हैं, वो शिवजी के बड़े भक्त थे और इसलिए उनको शिवजी की कृपा मिली थी और शिवजी के जो भी साधन है, उनका ऐश्वर्य है, यहां तक उनके बगीचे घर वगैरह सब शिवजी ने कुबेर को इस्तेमाल करने के लिए भी दिया था। कुबेर के दो लड़के थे जिनका नाम था नलकुवर और मणिग्रीव, और जैसे कि अक्सर होता है यह समाज में, जब कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है और उसके दो लड़के होते हैं तो ये शायद गलत रास्ते पे चले जा सकते हैं, क्योंकि इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतना सौंदर्य, इतनी सुख सुविधा, तो गलत मार्ग में जाएंगे ही। तो ये नलकुवर और मणिग्रीव भी इसी तरह से केवल स्वर्ग में रहकर भोग का जीवन बिता रहे थे। एक बार ऐसे हुआ कि कैलाश के पास में जो मंदाकिनी गंगा है उसमें वो स्नान कर रहे थे। आपको मालूम है कि गंगा जी तीनों लोकों से होकर बहती है, स्वर्ग लोक में भी, पृथ्वी लोक में भी और पाताल लोक में भी, और गंगा जी अलग अलग नामों से जानी जाती हैं इन तीन लोकों में। स्वर्ग लोक में उनको मंदाकिनी कहते हैं या अलकनंदा, पृथ्वी लोक में उनको गंगा कहते हैं या भागीरथी, और पाताल लोक में उनको भोगवती कहते हैं। है वही नदी, स्वर्ग लोक से होकर पृथ्वी में आती है, पृथ्वी से होकर फिर वो पाताल लोक में जाती है और इस तरह से त्रिभुवन को वो शुद्ध करती है। वैसे तो गंगा जी में स्नान किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि गंगा जी का जल जो है ये साधारण जल नहीं है, इसने भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों का स्पर्श किया है, इसलिए ये चरणामृत है, तीर्थ है, इसलिए गंगा जी ये एक तीर्थ स्थान है। लेकिन नलकुवर और मणिग्रीव अपने ऐश्वर्य से, अपनी भोग वृत्ति से इतने प्रभावित हो गए थे, उनको एक नशा जैसे चढ़ गया था, और वैसे भी उन्होंने मादक पदार्थों का सेवन तो किया था, इसलिए वास्तव में नशा भी चढ़ गया था, और ऐसे नशीली अवस्था में होने के कारण उन्होंने ये नहीं सोचा कि गंगा जी में किस भावना से हमें स्नान करना चाहिए। कई युवतियों को लेकर वो वहां पर क्रीड़ा करने लगे, जैसे हाथी वह हथिनियों को लेकर क्रीड़ा करता है जल में, और निर्वस्त्र होने के कारण और पूरी तरह से मादक पदार्थों के प्रभाव में होने के कारण उनके आंख ऊपर नीचे हो रहे थे, ठीक से बोल नहीं रहे थे, और ठीक उसी समय नारद जी वहां से गुजरे। जब नारद जी वहां से आए तो जो युवतियां थीं वो बहुत घबरा गईं, तुरंत बाहर आके उन्होंने जो उचित था वो किया, लेकिन नलकुवर और मणिग्रीव उन्होंने ऐसे नहीं किया। नशा इतना चढ़ गया था उनको कि उन्होंने नारद मुनि के सामने भी अपने आप को सही ढंग से पेश कराना यह भी ठीक नहीं समझा। तो नारद मुनि ने इनकी दशा देखी, अपने मन ही मन में नारद मुनि विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये दो लड़के कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर जी कितने महान व्यक्ति हैं, देवता हैं, और इतना होते हुए ये दो लड़के इस तरह के कार्य करते हैं क्योंकि भोग से वो पागल हो गए हैं। तो नारद मुनि मन में विचार करने लगे कि ये जो धन या ऐश्वर्य है ये इतनी बुरी चीज है कि आदमी के बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। कुंती महारानी भी इसी बात को श्रीमद् भागवत में कहती है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीधीर एधमान मदह पुमान नैवार्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, जिन व्यक्तियों के पास ऊंचा जन्म है, मतलब ऊंचे कुल में जन्म हुआ है जिसका जन्म, या जिसके पास बहुत धन है, बहुत अमीर है, ऐश्वर्य। तीसरा, श्रुति, मतलब बहुत शिक्षित है, बड़ा पंडित है, बहुत श्लोक जानता है, या बड़ा पीएचडी है, ये है, ये पुरस्कार मिला, ये विश्वविद्यालय से ये पुरस्कार मिला। या श्रीधीर, बहुत सुंदर है शारीरिक दृष्टि से। जब ये चार चीजें किसी व्यक्ति के पास आ जाती हैं, एधमान मदहपुमान, व्यक्ति कैसे हो जाता है? जैसे उन्मत्त हो जाता है। जैसे व्यक्ति शराब पीता है तो कैसे उन्मत्त हो जाता है, उसी तरह से ये चार चीजें, मतलब ऐश्वर्य, ऊंचा कुल, शिक्षण या ज्ञान या सौंदर्य, ये चार चीजें एक मादक पदार्थ के बराबर है। जिस व्यक्ति के पास होती हैं, उसके नशा चढ़ जाता है, बहुत घमंड उसका बढ़ जाता है। हम समाज में देखते हैं कि आज कोई व्यक्ति गरीब है, कल उसको अचानक धन मिल गया, उसका बर्ताव कैसे एक रात में बदल जाता है। या कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कितना घमंड बढ़ जाता है। तो घमंड प्रमुखतः ये चार चीजों से आता है, और इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, त्वाम अकिंचन गोचर नैव एव अर्हति अभिधातुम वै, कि ये लोग आपके पास नहीं आ सकते हैं हे कृष्ण। अर्थात ये लोग जिनके पास ये चार चीजें हैं, इनको आपके शरण में आना, आपकी भक्ति करना बहुत कठिन है। आपके पास, आपके शरण में कौन आ सकता है? अकिंचन गोचर, अकिंचन मतलब जो कंगाल है, जिसके पास कुछ नहीं है, या तो फिर जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अपने मन में जानता है कि यह सब कुछ मेरा नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, आसानी से पाया नहीं जाता। लेकिन ज्यादातर जिसके पास कुछ नहीं है, वो तो भगवान के शरण में जा सकता है, उसके लिए त्यागने के लिए है भी क्या। लेकिन जिसके पास सौंदर्य, बुद्धि, ज्ञान, ये वो सब है, तो वो 10 बार सोचता है, अरे ये त्यागना पड़ेगा, वो त्यागना पड़ेगा, क्या होगा। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन होता है। कृष्ण भगवान गीता में भी बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहरित चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। वो कहते हैं कि जिनके मन में भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति है, वो लोग भगवान की सेवा में स्थिर नहीं रह सकते, चंचल रहेंगे, आएंगे भी तो थोड़ी देर आएंगे, कुछ करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन स्थिर रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते ऐसे लोग। इसलिए बाइबल में भी कहा है कि एक अमीर आदमी को जाना बहुत मुश्किल है भगवान के धाम में। एक सुई की नोक से एक ऊंट को आप निकाल सकते हैं, लेकिन अमीर आदमी को भगवान के धाम में जाना बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं अमीर भक्तों के, जो अमीर परिवार में जन्म लेकर भी शुद्ध भक्त हुए, लेकिन फिर भी सर्वसाधारण ये एक नियम देखा जाता है सारे समाज में। तो खैर, नारद मुनि चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे कि इन चार चीजों में से, मतलब ऊंचा जन्म, ऐश्वर्य, सौंदर्य और शिक्षण बहुत ज्यादा है। जब व्यक्ति को धन मिल जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और वह क्रूर बन जाता है, फिर उसके पास सारे पाप चले आते हैं, फिर स्त्री का भोग करना, नशा पान करना, ये सब शुरू कर देता है आदमी, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये सारे कार्य शुरू कर देता है। तो नारद मुनि सोचने लगे कि इनके पास, इनके ऊपर अगर मुझे कृपा करनी है तो इनके ऊपर एक अंजन लगाना चाहिए आंखों के ऊपर, क्योंकि इनकी दृष्टि अब खराब हो चुकी है। इनकी दृष्टि अभी उनके ऐश्वर्य की वजह से दूषित हो गई है, और ऐसे अवस्था में ये सत्य अवस्था को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए मैं एक ऐसे अंजन लगाऊंगा जिससे वो चीजों को जैसे है वैसे देख पाएंगे। कौन सा अंजन है वो जानते हैं? नारद मुनि ने कौन से अंजन की बात कर रहे थे? हाँ, प्रेम की बात नहीं, गरीबी। वो सोच रहे थे जब तक ये लोग गरीब नहीं होंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। जब आदमी गरीब हो जाता है ना, उसके होश ठिकाने आ जाते हैं, जब आदमी अमीर रहता है, सर्वसाधारण, हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वसाधारण, जब आदमी को पैसा आ जाता है घमंड बढ़ता है, लेकिन पैसा खो जाता है तो सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। फिर नारद मुनि विचार करने लगे कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो बहुत कष्ट सहन करता है, अपने जीवन यापन के लिए भी उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए जब दूसरों का कष्ट वो देखता है तो उसका हृदय पिघल जाता है और वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसकी तरह से पीड़ित अवस्था में रहें। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि कई बार ऐसे देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले गरीब था और अब अमीर हुआ है, तो वो ऐसे कोई समाज के गरीब लोगों के लिए कार्य करता है, कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई पैसे बैंक में रखता है जिसके ब्याज से गरीबों का देखभाल किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि गरीबी का कष्ट कितना है। जिसको खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है उसका दुख तो केवल गरीब ही जान सकता है, अमीर आदमी नहीं जान सकता। तो जो गरीब होकर अमीर हुआ है फिर वो जान सकता है। और फिर नारद मुनि सोचने लगे कि जो गरीब व्यक्ति होता है कई बार इतना परिश्रम करने के बाद भी उसको दो समय की दाल रोटी भी नहीं मिलती, इसलिए उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसकी इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं और उसके मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा भी कमजोर हो जाती है। तो भोग करने की जो इच्छा है वो तब तीव्र हो जाती है जब आदमी भरपेट होता है, बहुत खाया पिया सब कुछ है, तब इंद्र तृप्ति ज्यादा कर सकता है। जब आदमी के पेट में भूख है, प्यास है, कपड़े नहीं, तो क्या इंद्र तृप्ति की सोचेगा, वो ज्यादा अपने पेट भरने की सोचेगा। और इसलिए इंद्र तृप्ति की भावनाओं से कभी कभी वो मुक्त हो सकता है, जो कि अमीर आदमी के लिए कठिन है। तो नारद मुनि सोचने लगे, हम साधु लोगों को कई बार बहुत तपस्या करना पड़ता है, तपस्या करके हम इंद्र तृप्ति से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये आदमी कभी कभी गरीब होता है तो गरीबी की वजह से ही वो इंद्र तृप्ति से आगे आ सकता है। हाँ, ये भी देखा जाता है कि अमीरी और गरीबी ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि कई गरीब लोग भी इंद्र तृप्ति की इच्छा रखते हैं। जो सड़क में रहता है, जिसके घर भी नहीं है, वो भी ख्वाब देखता रहता है मन में, कौन बनेगा करोड़पति, मैं भी एक दिन करोड़पति बनूंगा, मेरा भी गाड़ी होगा, मेरे भी बंगला होगा, मेरा ये होगा वो होगा, वो भी सपने देख रहा है। केवल बात क्या है, अभी कोई उपाय नहीं है उसके पास, इसलिए उसको रहना पड़ रहा है गरीबी की परिस्थिति में। लेकिन वास्तव में अगर किसी ने गरीबी की अवस्था को सही भावना से स्वीकार किया तो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। दारिद्र्य की अवस्था में कितने बड़े बड़े भक्त हुए, तुकाराम महाराज हुए, सुदामा विप्र हुए, और कितने ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए जब भक्त गरीब है तो कभी भगवान को कोसता नहीं है, अभक्त कोसते हैं भगवान को, क्या है ये नहीं वो नहीं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता, वो जानता कि ये भगवान की कृपा है। तो इस तरह से नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उचित कृपा, दंड तो क्या, शाप तो क्या, ये तो वरदान है कि उनको फिर से मैं गरीबी की अवस्था में लगा दूंगा। ऐसी अवस्था में जबकि वो समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। वैसे जो व्यक्ति वस्त्र ठीक से नहीं पहनता है, निर्वस्त्र रहने की इच्छा रखता है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसे एक वृक्ष का शरीर मिल जाता है। वृक्ष ये भी एक शरीर है, वृक्ष के कोई कपड़े नहीं होते, कोई पैंट शर्ट साड़ी कुछ पहनता नहीं है, वृक्ष दिन रात वहां गर्मी में ठंडी में बारिश में रहना पड़ता है, लोग आके काटते हैं, लोग उसके फूल निकालते हैं, फल निकालते हैं, पत्ते निकालते हैं, तो वृक्ष का जीवन बड़ा कठिन है और कुछ बोल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता है वृक्ष। कोई हमें मारने आए हम भाग सकते हैं, लेकिन कोई वृक्ष को काटना है कहां भाग सकता है वृक्ष। तो नारद मुनि ने सोचा इनको वृक्ष का शरीर देना उचित है, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त जैसे नारद मुनि वो बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए उनका शाप जो होता है वो भी एक वरदान होता है। भगवान के भक्त जब शाप भी देते हैं वो उस व्यक्ति की भलाई के लिए होता है, इसलिए भगवान के भक्तों का गुस्सा जो होता है वो साधारण व्यक्ति के गुस्से की तरह नहीं होता। साधारण व्यक्ति गुस्सा करता है जब उसके अहंकार को चोट पहुंचती है, लेकिन भगवान का भक्त गुस्सा करता है कृपा देने के लिए, दूसरे व्यक्ति को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। तो दोनों गुस्सों में बहुत अंतर है। तो नारद मुनि ने फिर शाप दिया कि तुम ये अमर अर्जुन वृक्ष बन जाओ, लेकिन मैं ये वरदान देता हूं कि 100 साल बाद, मतलब देवताओं के 100 साल बाद, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे, तुमको दर्शन देंगे, और फिर तुम अच्छे भक्त होकर अपने स्वर्गलोक में वापस जाओगे। लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें स्मरण रहेगा तुम्हारा पहला जन्म, और इसलिए तुम पश्चाताप करते रहोगे 100 दिव्य युग, 100 दिव्य साल। इस तरह से नलकुवर और मणिग्रीव इनको अर्जुन वृक्ष का शरीर मिल गया, और इतने सालों से वहां खड़े थे, उनको पूरी तरह से याद था कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था, और उन्होंने बहुत पश्चाताप होकर सोच रहे थे कि अभी कृष्ण भगवान के घर में हमको जन्म मिला, कितना सौभाग्य है, ये तो केवल श्री कृष्ण की कृपा है। और उस समय श्री कृष्ण वहां पास में थे उखल से बांधे हुए। तो कृष्ण ने सोचा, मुझे ये कुबेर के 2 पुत्रों से क्या लेना देना है, ये तो भोगी है, लेकिन मुझे नारद मुनि से बहुत कुछ है, क्योंकि नारद मुनि ने इनको ये शाप या वरदान दिया है, इनके ऊपर ये कृपा की है कि मैं इनको दर्शन दूंगा, तो मुझे नारद मुनि मेरे भक्त की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो फिर भगवान ने क्या किया, उखल को खींच दिया। हालांकि उखल पत्थर का होता है, इतना बड़ा भारी होता है, फिर भी उस छोटे से बाल कृष्ण ने उस उखल को खींचा, और उखल दोनों वृक्षों के बीच में अटक गया। और जब अटक गया तो भगवान ने क्या किया, खींचा। अब खींचा तो क्या हुआ, भगवान की शक्ति उनके आयु के ऊपर निर्भर नहीं है। मनुष्य समाज में जब बच्चा छोटा होता है उसकी शक्ति बहुत कम होती है, बुद्धि कम होती है, जब युवक हो जाता है तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य होता है, उनकी आयु क्या है, कौन सा रूप है, कौन सा अवतार है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाल कृष्ण के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति उतनी ही है जैसे कि किसी भी अन्य रूप में है, मतलब अनंत शक्ति। तो उन्होंने एक झटका मार दिया, झटका मारने से क्या हो गया, दोनों वृक्ष धड़ाक से नीचे गिर पड़े, और उनमें से ये 2 तेजस्वी प्रकाशमान व्यक्ति बाहर आए, सोने के किरीट, उनका चेहरा भी स्वर्ण की तरह चमकता हुआ, हाथ जोड़े हुए, सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित, और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा हुई, आप ही स्वयं भगवान हैं, हमें पता चल गया है। हालांकि हम आपके दर्शन के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हैं, लेकिन आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि की कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हम केवल यही इच्छा रखते हैं मन में कि हमारे आंखों का प्रयोग हम आपके दर्शन के लिए करेंगे, हमारे कानों का प्रयोग आपकी कथा सुनने में प्रयोग करेंगे, हमारे जिह्वा का प्रयोग आपकी कथा बोलने में प्रयोग करेंगे, हमारा सर आपके सामने झुकाने में प्रयोग करेंगे, हमारी हाथ आपकी सेवा करने के लिए प्रयोग करेंगे। इस तरह से सुंदर स्तुति करने लगे नलकूवर और मणिग्रीव। और फिर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे नलकूवर मणिग्रीव, नारद मुनि के वचन को रखने के लिए मैं यहां पर तुम्हारे सामने आया हूं, तुम्हारा सौभाग्य है। देखो भगवान, देखो कि भक्तों की, जो साधुओं का चेहरा देखने मात्र से कितना लाभ होता है। जो भक्त होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनका संग प्राप्त करना ही हमारे जीवन की परिपूर्णता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको वापस भेज दिया उनके स्वर्ग लोक में, और वो शुद्ध भक्त होकर वहां पर श्री कृष्ण की सेवा करते रहे। उधर जब ये दोनों वृक्ष गिर पड़े तो हाहाकार मच गया, क्योंकि इतना धूमधड़ाका मच गया था उन वृक्षों के गिरने से, इतना भीषण आवाज आया था, वृंदावन के सारे लोग वहां पर दौड़ कर आए कि क्या हुआ क्या हुआ। और फिर आकर उनको दिल पर इतना धक्का पहुंच गया, उन्होंने देखा कि ये 2 बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए हैं, और बीच में बाल कृष्ण उखल से बंधे हुए खेल रहे हैं, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, हंस रहे हैं। और उन्होंने सोचा सारे ब्रजवासियों ने कि अरे ये 2 बड़े बड़े वृक्ष गिरे कैसे, देखियो भगवान की कृपा है कि कृष्ण के ऊपर गिरे नहीं, अगर कृष्ण के ऊपर गिरता एक भी वृक्ष तो ये चूर चूर हो जाते, हड्डी पसली हो जाती। लेकिन भगवान की कृपा है, न जाने हमने कोई पुण्य किया होगा पूर्व जन्मों में कि हमारा कृष्ण बच गया। और फिर उन्होंने देखा, सोच विचार करने लगे कि अरे ये वृक्ष गिरा कैसे, लेकिन ये साधारण तो छोटा सा पौधा नहीं है, इतना विराट वृक्ष है। तो उन्होंने देखा कि उकल अटका हुआ है। तो साधारण दृश्य से देखा जाए तो ऐसे लगता था कि कृष्ण ने उकल को खींचकर दोनों वृक्षों को गिराया है, लेकिन दूसरी ओर बुद्धि का प्रयोग करने से लगता है ये बच्चा कैसे दो वृक्षों को गिरा सकता है। इस तरह से दोनों विचारों में वो बिल्कुल भ्रमित हो गए, कोई निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए कि क्या हो गया है और कैसे वृक्ष गिर पड़े और कैसे कृष्ण बच गए। उधर कृष्ण के मित्र ग्वालबाल थोड़े बहुत थे, वो जोर जोर से बोलने लगे ब्रजवासियों को, हमने देखा है, हमने देखा है, वैसे श्री कृष्ण ने उखल खींचा, दोनों वृक्षों को गिरा दिया, और जब गिरा दिया उसमें से दो तेजस्वी प्रकाशमान सोने के स्वर्ण के रंग के जैसे व्यक्ति निकले। उन्होंने हाथ जोड़ा हमारे कृष्ण के सामने, बहुत कुछ बोले, शब्द हम समझ नहीं पाए वो क्या बोले, और फिर आकाश में उड़कर चले गए। तो ब्रजवासियों ने देखा ये बच्चे क्या बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे कभी होता है क्या, तो वृक्ष गिरता है, कोई आदमी अंदर से आते है, क्या है सब ये बच्चे हैं, आखिर इनकी बड़बड़ाहट को हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी और कोई उत्तर नहीं था। तो फिर हर बार जब श्री कृष्ण ऐसी लीला करते थे, इसी तरह से ब्रजवासी भ्रमित हो जाते थे, अरे कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन बाद में सोच विचार करके, विश्लेषण कर करके थक जाते थे। जैसे अंग्रेजी में शब्द है एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब ज्यादा किसी चीज का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, जैसे वैज्ञानिक ये कैसे, इधर से वैसे, फिर पैरालिसिस, फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसलिए ब्रजवासी भी विश्लेषण कर करके फिर थक गए, सोचने लगे चलो जो भी हुआ हुआ, लेकिन कृष्ण तो बच गया, चलो अच्छी बात है। फिर नंद महाराज वहां पर आए, हंसने लगे, फिर उखल से कृष्ण को छुड़वा दिया, और मन में सोचने लगे कि क्या यशोदा है, क्यों उसने ऐसे बांध दिया है, और फिर छोड़ दिया और श्री कृष्ण मुक्त हो गए। माता यशोदा वहां आई, बड़े अपने भगवान को प्रार्थना करने लगे, शुक्र है आपने बचाया हमारे कृष्ण को, नहीं जानते थे कि वही भगवान वहां उनके सामने खेल रहा है। माता यशोदा का प्रेम, नंद महाराज का प्रेम इतना तीव्र है कि उस तीव्र प्रेम की वजह से ये दोनों बिल्कुल जान ही नहीं पाए कि जो जिस व्यक्ति को वो उनका बच्चा मान रहे हैं, उनका पुत्र मान रहे हैं, वो परम भगवान है, जिनसे कि शिव जी ब्रह्मा जी भी डरते हैं, जिनकी वजह से, जिनके इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने यह सुंदर दामोदर की लीला प्रदर्शित की। दाम मतलब रस्सी, और उदर मतलब पेट। तो क्योंकि भगवान के दाम को, उदर को रस्सी से बांधा गया था, इसलिए उनका नाम हुआ दामोदर। इस महीने को भी दामोदर महीना कहा जाता है, कार्तिक महीना भी कहा जाता है। और यह दामोदर लीला आज इसी तिथि पर, इसी दिवस पर हुई गोकुल में। तो बहुत पावन दिवस है हम सबके लिए। तो आज हम इस लीला का स्मरण करते हुए हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। ये दिए लगाने चाहिए, ये दिए लगाए जाएंगे, आप यहाँ दीपोत्सव मनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक की लाइट हम बंद कर देंगे, इसमें कोई दम नहीं, और केवल सादा जो है ये लाइट दीप हम रखेंगे और हम भजन करेंगे, और भजन आधा एक घंटा करेंगे, आधा घंटा, उसके बाद में हम दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि विरचित वो प्रार्थना हम गाएंगे। और जब हम दामोदर अष्टकम गाएंगे तो आप सब आके एक लाइन लगाकर आप भगवान श्री कृष्ण दामोदर को, राधा गोकुलानंद को दीप अर्पण कर पाएंगे। बड़े भक्ति भाव से कीजिएगा, कार्तिक महीने में ये दीप अर्पण करने का फल बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके कोई प्रश्न है जब तक कि दर्शन खुलते नहीं है?